الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتبعوا السواد الأعظم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور بے ضرور اضافہ کرتا رہوں گا چاہے وہ نعمت ظاہری ہو چاہے روحانی ہو باطنی ہو جب آدمی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد تو میرا عذاب بہت سخت ہے ہمارا ابھی جو موقع چل رہا ہے وہ اگست کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے 14 اگست ہم مسلمانوں کے لیے خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کے لیے بڑا اہم دن بنایا جس میں ہمیں اس پاکستان کی آزادی کی نعمت ملی بعض لوگ عجیب و عجیب غریب جملے کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تو ہم ہندوؤں کے ساتھ ہوتے اس سے اچھا تو ہم ہندوستان کے ساتھ ہوتے میرے پیارے بھائی وہاں کے مسلمانوں کی حالت تو جانو جا کے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمیں آزادی کی قدر اس لیے نہیں کہ آزادی ہم نے حاصل نہیں کی ہمارے آبا و اجداد نے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں نا ان کو پتا ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے یہاں تک کہ جب ڈھاکہ فال ہوا اور اعلان ہوا کہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں دونوں جانب چاہے وہ بنگلہ دیش کی جانب میں تھے چاہے وہ پاکستان کی جانب میں تھے بعضوں کو ہارٹ فیل ہو گیا اتنا غم ہوا اتنا غم ہوا ہمارے استاد محترم مولانا یحییٰ مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی ان کا ہارٹ ٹیڑھا تھا میں سمجھتا تھا کہ شاید جیسے بچپن سے ہی کسی کا بعد میں پتہ چلا کہ یہ جب ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو سکھوں نے جب ریل کو روک کر کاٹنا پیٹنا شروع کیا صحیح تو اس میں یہ زخمی ہوئے تھے اور اس وقت سے ان کا ہارٹ ٹیڑھا ہے تو ان لوگوں سے جنہوں نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں ان کے دل میں قدر ہے ان کو پتا ہی کہ یہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان بحیثیت ایک مضبوط اسلامی ملک کے پہچانا جاتا ہے آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلامی ممالک میں جو سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے سارے وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ سے کے پانی سے سینچا ہے اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے چنانچہ یہاں کی فوج یہاں کے مدارس یہاں کا نظام یہاں کا آئٹم بم یہاں پر فوج بناتی ہے جہاز تو وہ تو بناتی ہے تو وہ ہر چیز کفار کو کھلتی ہے ہر چیز کفار کو کھلتی ہے کہ یہ کیسے ترقی کر رہے ہیں چنانچہ جب ہمارا یہ ایٹم بم کا معاملہ ہوا اور دھماکے آفیشیل طور پر کر دیے گئے پاکستان ایٹمی طاقت تو بہت پہلے بن چکا تھا لیکن جب یہ धमाके करके बाकायदा इसका ऐलान किया गया तो इसको इस्लामी बम का नाम दिया गया। यहूदो नसारा के ममालिक ने धमाके किए तो किसी यहूदी बम नहीं कहा गया, ईसाई बम नहीं कहा गया, हाँ। और इंडिया ने भी किया तो हिंदू बम नहीं कहा गया, लेकिन जब पाकिस्तान ने कहा किया तो इस्लामी बम का नाम दिया गया। आप सोचे उनकी नजरों में ये पाकिस्तान कितना खटकता है, इस वजह से कि पाकिस्तान कोई चीज है ना भाई, कोई तो ऐसी बात है कि जिसकी वजह से सारी दुनिया इस पाकिस्तान के पीछे लगी हुई है, इस पाकिस्तान के पीछे लगी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर जितने इस्लामी ममालिक हैं, इतना मजबूत और मरबूत इस्लामी मदारिस का जाल किसी दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क के अंदर नहीं है जितना मरबूत और मजबूत निजाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और आज छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो पाकिस्तान और फिर ये कराची अल्लाह के अजाब से बचा हुआ, छोटे छोटे बच्चों का कुरान आसमानों पर जाता है। आप यही मदरसा, आपके मोहल्ले का मदरसा है ना, यहाँ है इस गली में 3 मदरसे, आप खड़े हो जाइए, छोटे छोटे मासूम बच्चे कायदा लेके जा रहे हैं। हमें इतना प्यार आता है तो अल्लाह को कितना प्यार आता होगा, अल्लाह को कितना प्यार आता होगा मेरा कलाम पढ़ने के लिए ये बच्चे जा रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं, ये मुल्क हमारे अकाबिर की दुआओं का समरा है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसके लिए रोते थे, अपने खास खास खुलफा हत्ता के मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे आदमी को पाकिस्तान की तहरीक के लिए उन्होंने मुतहर्रिक कर रखा था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई वो लोग नादान हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुओं के साथ मिलकर मुश्तरक हुकूमत बना लो, मुश्तरक हुकूमत बना लो। फरमाते हैं देखो गांधी साहब भी अलैदगी की तहरीक चला रहे हैं कांग्रेस के नाम से, और जिना साहब भी तहरीक चला रहे हैं आजादी की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से। यह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बातें बता रहा हूं आपको। फरमाते हैं देखो कांग्रेस की मिसाल ऐसी है जैसे दोनों आंखों से अंधा, क्यों ना उनके पास ईमान की नेमत है गांधी साहब के पास ना आमाल की नेमत है, तो ये दोनों आंखों से अंधे हैं। फिर फरमाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में अक्सरियत अगरचे फुसाक और फुज्जार की है लेकिन ईमान से मुशर्रफ हैं, काणे हैं लेकिन ईमान से मुशर्रफ हैं, एक आंख से अंधे हैं तो एक आंख काम कर रही है। फिर फरमाते थे देखो अगर हम मुश्तरक हुकूमत बना लें तो आजकल तो जमहूरियत का एक फरसूदा निजाम है, एक मुफ्ती साहब का वोट भी बराबर, एक भंगी का वोट भी बराबर, बादशाह का वोट भी बराबर और एक गांव देहात वाले का वोट भी बराबर, फरसूदा निजाम है ये, अंग्रेज का लाया हुआ बेकार का निजाम है, चल तो यही रहा है जब तक के इस्लामी निजाम ना आ जाए। तो फरमाया देखो एक बस्ती है वहां पर 900 अफराद रहते हैं, 600 हिंदू हैं और 300 मुसलमान हैं, जब भी वोटिंग होगी कौन आएगा भाई, हिंदू आएगा, तो मुसलमान तो हमेशा मगलूब रहेंगे। और फरमाया कि अगर हम अभी कांग्रेस का साथ दे दें तो क्या कल को हम गांधी साहब से ये कह सकेंगे कि कुरान करीम का ये हुक्म है, लेकिन अगर हम जिना साहब का साथ देकर हाँ तहरीक चलाकर पाकिस्तान अलहदा से ले लेंगे हम ये बता सकेंगे कि कुरान पाक का ये हुक्म है। और फरमाते हैं देखो अगर वो अमल ना भी करे तो जाहिर में अमल की मुखालिफत भी नहीं कर सकेगा। आज असम्बलियों में अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत की बात चली, क्यों, कितना भी गया गुजरा मुसलमान हो खत्म नबूवत पर सबका ईमान है, चाहे वो नमाज ना पढ़ता हो, सूद खाता हो, शराब पीता हो, कुछ भी करता हो मुसलमान है। वही हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की बात, हाँ एक आंख उसकी है वो ईमान वाली आंख है, और ये जो ईमान वाली आंख है ना इसी का खतरा है कुफार को, आप कहेंगे कैसे, बोस्निया के अंदर, चेचनिया के अंदर इज्तिमाई कब्रों से की जो है ना एक फहरिस्त है, 50-50 आदमी एक कब्र में, 100-100 आदमी एक एक कब्र से निकले हैं, जंगी जराइम हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि बोस्निया और चेचनिया का मुसलमान सिर्फ इतना कहता था कि मैं मुसलमान हूं, आप उससे कलमा पूछते उसको कलमा भी नहीं आता था, उनके पास कुरान करीम का एक एक नुस्खा भी नहीं था। एक अल्लाह वाले इंतकाल हो गया उनका, जनाब अब्दुल वहाब साहब, वो जब ये हुकूमतें आजाद हुई, रियासतें आजाद हुई, तो वहां पर दीनी सफर के लिए गए, कहने लगे मैं एक बस्ती में पहुंचा, उस बस्ती के अंदर लोगों को ये पता चल गया कि मेरे पास कुरान करीम का एक नुस्खा है। कहने मैं सुबह जब उठा फजर के लिए तो फजर से पहले मर्दों की लाइन अलग लगी थी, औरतों की लाइन अलग लगी हुई थी, बच्चों की लाइन अलग लगी हुई थी। मैं घर से निकलकर हैरान रह गया उस गांव में, कहने लगे हमें वो कुरान का नुस्खा दिखाओ, कुरान होता कैसा है। अब आपको समझ आई ये पाकिस्तान कितनी बड़ी कीमत है, कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। अभी मैं किसी को कहूं कि भाई बच्चे हाफिज होने वाले 20 कुरान शरीफ की जरूरत है, हर एक आदमी सादत समझते हुए कहेगा भाई ये बच्चे कुरान पढ़ेंगे सवाब हमको मिलेगा। हाँ, और अच्छे से अच्छा कुरान देंगे, अब कितने अच्छे अच्छे छापों के कुरान शरीफ आ रहे हैं। ठीक, ये नेमत है पाकिस्तान जिसको हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह से मांगा है, इसकी बुराइयां मत करो। देखो मेरे भाई, कोई भाई गुस्से वाला होता है, कोई भाई नरम होता है, भाई भाई रहता है ना, दुश्मन तो नहीं हो जाता। ठीक, अगर हम अपने मुहाफिजीन की, जो हमारे सरहद के मुहाफिजीन है, इनकी बुराइयां करेंगे तो याद रखिए हमारी सरहदें महफूज नहीं रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि खराबी किसी में नहीं है, खराबी हो सकती है, लेकिन ये तो भाई भाई का मामला है ना भाई। एक घर के अंदर भाई की भाई से कोई मुंह मारी हो जाए तो क्या ये अच्छा लगता है कि वो मुंह मारी का मामला पड़ोस में जाए, बाहर निकले, कोई दूसरे लोग इसके अंदर शरीक हो। जो शरीफ लोग होते हैं कहते हैं भाई 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 के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, राय का इख्तलाफ हो सकता है, सही है जी, हत्ता के भाई भाई के अंदर बातचीत भी बंद हो जाती है, लेकिन तीसरे को गुंजाइश नहीं है कि हम दो के दरमियान बात कर सके। तो अपने सरहद के मुहाफिजीन के खिलाफ कोई बात ना करें, नेमत समझे अल्लाह ताला की। यही सरहद के मुहाफिजीन थे ना 1965 के अंदर, और आपको समझ जाना चाहिए कि 1971 के अंदर भी भारतीय फौजियों ने मुसलमान फौजियों का, पाकिस्तानी फौजियों का लिबास पहनकर वो हरकतें की जिसको तारीख में आज लिखा गया है, तारीख झूठ बोल रही है। और फिर जनाबे वाला औरतों की इज्जतों की नामूस को खराब करने का नाम पाकिस्तानी फौज पर लगाया गया, और हम भी बस लकीर के फकीर। अगर ऐसा था तो आज तक हिंदुस्तान पर की हुकूमत गायबाना चल रही थी बांग्लादेश के ऊपर। तो मेरे भाई, अपने मुहाफिजीन की कदर कीजिए। इख्तिलाफ राय से कोई मना नहीं करता, लेकिन हर चीज का एक ढंग होता है, एक तरीक़ेकार होता है। गालम गलोच कोई तरीक़ेकार नहीं है। कोई शरीफ आदमी गाली नहीं देता, कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी शरीफ आदमी अपनी माँ बहन को बाजार में लाकर खड़ा नहीं करता। तो अपने मुहाफिजीन की, ये तो सरहद के मुहाफिजीन हैं। आप देखें हमारा मीडिया, मैं ये दावे से कहता हूं, ना ये पाकिस्तान का है ना इस्लाम का है, ना ये पाकिस्तान का है ना इस्लाम का है। जिस तरह इसको पाकिस्तान का दिफा करना चाहिए, पाकिस्तान का दिफा नहीं करता। आज इंग्लैंड के अंदर मुसलमान खुसूसन पाकिस्तानियों के खिलाफ कितना बड़ा मामला किया जा रहा है, कोई ना बताने को तैयार है ना दिखाने को तैयार है। अब कहां गए वो अकलियत के नारे लगाने वाले कि जी अकलियत 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 अकलियत, गायब है वो अकलियत। अब वहां पर वो अकलियत नजर नहीं आ रही। तो ये मीडिया तो ना पाकिस्तान का है ना इस्लाम का है। तो याद रखें, जो हमारी मुल्की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं उनकी कदर करें, उनकी कदर करें, और इसी तरह जो हमारी दीनी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं ना उनकी भी कदर करें। इस मीडिया ने दोनों काम किए, चाहे वो सोशल मीडिया था या प्रिंट मीडिया था या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, इन तीनों के जरिए से आज नई नस्ल के अंदर से हमारे सरहद के मुहाफिजों की भी इज्जत निकाल दी गई है और जो हमारे दीनी मुहाफिज के सरहद, दीनी सरहद के मुहाफिज हैं उनकी इज्जत भी दूर कर दी गई। उलमा के पास ना जाना, मदारिस में दाखिल नहीं करना, मदारिस में बच्चे को मत भेजना। मेरे प्यारे भाई, यही वो चीजें हैं जिससे लोग कौमें खत्म हो जाती हैं। आजादी बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है आजादी। आज मैं और आप यहाँ पे आजादी से जो है ना सांस लेते हैं, दीन के हर शोबे को जिंदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वही बात हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की बार बार दोहराऊंगा कि भाई फासिक हैं, फाजिर हैं, लेकिन ईमान की आंख जिंदा है। हाँ, ईमान, इसी ईमान की वजह से तो डर लगा हुआ है कि ईमान है इनके पास, किसी वक्त भी खड़ा हो गया तो जो है ना शेर है, बबर शेर है। अपने पाकिस्तान की कदर कीजिए, अपने बड़ों की कदर कीजिए, ना कदरी ना कीजिए, ना कदरी ना कीजिए। मौलाना शब्बीर, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह कितनी जबरदस्त तहरीक में हिस्सा लेते रहे, यहां तक के जब कायदे आजम का इंतकाल होने वाला था उन्होंने वसीयत कही कि मैं सुन्नी हनफी हूं, सुन्नी हनफी हूं, मेरी जनाजे की नमाज अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी पढ़ाएं। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सगे भांजे थे मौलाना शब्बीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते मैंने खुद कायदे आजम को सुन्नियों की तरह नमाज पढ़ना सिखलाया। और फरमाते हैं यही हजरत थानवी के भांजे के एक मौके पर मुझे हजरत थानवी ने खास खत देकर भेजा के कायदे आजम को, मिस्टर जिना को पहुंचा कर आओ। क्या मैं दिल्ली पहुंचा थाना भवन से, रात 12 बज रहे थे, जब मैं उनके कमरे में गया तो मिस्टर जिना सजदे में रो रहे थे और मैं उनके करीब हुआ तो अल्लाह से कह रहे थे अल्लाह पाकिस्तान बना दे, अल्लाह पाकिस्तान बना दे। आज के नए नए नस्ल को नई नई बातें बताई जाती हैं, लोगों ने खून दिया इस पाकिस्तान की सरहद के लिए। आज मैं और आप यहाँ पे अजान दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गली गली मस्जिद बनती है, लोग खुश हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अजान की आवाज आ रही है। हमारे एक दोस्त है अमरीका में पढ़ने गए हुए, मुझे कहने लगे हजरत 2 साल हो गए अजान की आवाज नहीं सुनी है। कहाँ है अजान की आवाज, वो बरकत कहाँ है, वो रहमत कहाँ है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अजान होती है शैतान भागता है, इतना दूर भागता है कि उसको अजान की आवाज ही ना आए। जब ये रिवायत मैंने पहली दफा पढ़ी बहुत साल पहले, तो मेरे दिल में आया कि इंशाल्लाह फिर तो कराची के बाहर जाके नूरियाबाद पे रुकता होगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, यहाँ अजान हो रही है, यहाँ से बड़ा चलो शादाब पे रुक जाऊंगा, शादाब पे अजान हो रही है, फिर कहता होगा मदीना मस्जिद रुक जाऊंगा, फिर उधर से भागते 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 कहाँ निकल जाता होगा इंशाल्लाह। तो ये अजान की आवाज बड़ी नेमत, ये नमाज बड़ी नेमत, ये जुमे के इज्तेमात बड़ी नेमत, आज मैं ये खुलकर इतनी बात कर रहा हूँ ये बड़ी नेमत। तो इस पाकिस्तान की कदर अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी दूसरे मुल्कों में जाता है फिर पता चलती है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपको कैसा सरसब्ज़ शादाब मुल्क अता फरमाया है, जिसको अल्लाह ताला ने रूहानी एतबार से भी सरसब्ज़ बनाया है और जनाबे वाला मादनियात के एतबार से भी सरसब्ज़ है। इसी तरह जनाबे वाला अगर आप खेती बाड़ी की जानिब चले जाएं तो सरसब्ज़ शादाब अल्लाह ताला ने बनाया है, सोना चांदी की भी कमी नहीं है। ये कहलेता बात है कि निकालने ना निकालने की क्या वजूहत, पेट्रोल की कमी नहीं है ना निकालने की क्या वजूहत, पेट्रोल भी अल्लाह ने दिया है, गैस भी अल्लाह ने दी है। नेमतों की कदर करना सीखें, आपस में भाई बंदी से रहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सबसे बदबूदार नारा जो है ना ये असबियत का नारा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया छोड़ दो इस बदबूदार नारे को, मैं महाजिर, मैं पठान, मैं बलोच, मैं पंजाबी, मैं सिंधी। अल्लाह फरमाते ये तो पहचान के लिए था, रिश्तेदारियां कायम होती है ना भाई, ये मामू है, ये चचा है, ये फुप्पा है, ये खालू है, ये खाला है, ये फुप्पी है, ये तो इसलिए था। ये इसलिए नहीं है कि तुम सिंधी होकर महाजिर होकर कोई फजीलत की बात है, तुम्हारे लिए फजीलत की बात एक ही बात है कि हम सब मुसलमान है। ہم سب کیا ہیں بھائی؟ مسلمان ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا مسلمان کی کیفیت ایسی ہے جیسے کہ جسم کے اعضاء ہوتے ہیں, اگر پھانس چھپ جائے انگلی کے اندر پورا جسم اس کو محسوس کرتا. اس طرح ایک مسلمان پہلے ایسے ہی تو تھا, پہلے ایسے ہی تھا نا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک عیسائی بادشاہ کو خط لکھا کہ ظلم نہیں کرنا اور عزت سے ہماری بہنوں کو ہمارے پاس واپس لوٹا دو, ورنہ اتنا بڑا لشکر لے کر آؤں گا جس کی ابتدا تمہارے محل میں ہوگی, انتہا جو ہے نا میرے پاس ہوگی. اتنا بڑا لشکر لے کر آؤں گا ایک کو چھڑانے کے لیے, ایک کو چھڑانے کے لیے. تکلیف یہ محسوس کرنا کہ میرا بھائی تکلیف کے اندر ہے, میرے بھائی کو پریشانی ہے, یہ مسلمان کی کیفیت ہونی چاہیے. میرے پیارے بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمیں اپنے پاکستان کی ایک ایک چیز سے محبت ہونی چاہیے, ایک ایک چیز سے محبت ہونی چاہیے. جبکہ یہ میڈیا ہمارے اندر ہندوانہ رسومات کو رائج کر رہا ہے. میں مقتدر ہستیوں سے گزارش کرتا ہوں, دیکھو آنکھیں کھولو, کیا پاکستان کی معاشرتی کوئی بھی چیز انڈیا کے اندر دکھائی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کے پروگرام انڈیا کے اندر دکھائے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستانی لباس وہاں پر رائج کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی زبان وہاں رائج کی جا رہی ہے؟ لیکن اس میڈیا کے ذریعے سے ہندوؤں کی جو مکس اردو ہے وہ یہاں رائج کی جا رہی ہے. ہندوانہ لباس عورتوں کے اندر خصوصاً اور شادی بیاہ کے تقریبات کے اندر خصوصاً رائج کیا جا رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اس میڈیا کے ذریعے سے. یہ میڈیا پاکستانی بھی نہیں ہے اور اسلامی بھی نہیں ہے. یہ اسلام کے حق میں بھی کبھی نہیں بولے گا, پاکستان کے حق میں بھی نہیں. جتنا ضرورت ہوئی تھوڑا بہت بس دکھانے کے لیے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں, اللہ نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے, اس کی قدردانی کریں. یہ مساجد, یہ مدارس, چھوٹے چھوٹے بچے حافظ, پھر رمضان مبارک کی نعمت, کتنا زبردست رمضان گزرتا ہے. ہاں مزہ آتا ہے, تراوی ہو رہی ہے, گھر گھر تراوی ہو رہی ہے. جب میں حفظ کرتا تھا اس زمانے میں بھی گھروں میں تراوی ہوتی تھی, لیکن اتنی کثرت نہیں تھی. 1987 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گلی گلی, کہیں 10 روزہ, کہیں 15 روزہ, کہیں 5 روزہ, خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ اتنے ہو گئے ہیں کہ مسجدیں کم پڑ گئی ہیں. حافظ اتنے ہو گئے ہیں کہ مسجدیں کم پڑ گئی ہیں. میرے پاس ایک لڑکا کام کرنے کے لیے آیا, اس کی داڑھی نہیں تھی, میرے پاس آ کر بیٹھا, ادب سے سلام کیا. صرف سلام کرتے ہی میں نے اس کو ایک بات کہی کہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ مدرسے میں پڑھے ہیں. تھوڑا سا شرمایا, کہنے لگے جی حافظ قرآن. حافظ قرآن کا نور الگ محسوس ہوتا ہے, الگ محسوس ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی عجیب منظر دیکھا ہے کہ جو مدرسے سے پڑھ کر نکل جاتا ہے, معاشرے کی وجہ سے مغلوب, کوئی داڑھی کٹا دیتا ہے, کوئی پینٹ شرٹ کا لباس پہننا شروع کر دیتا ہے, لیکن ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں, دوبارہ گھوم کر اسی ڈگر پر آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی راستہ یہی صحیح ہے, راستہ یہی صحیح ہے. اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں قرآن پاک کی برکت سے. تو میرے بھائی اس پاکستان کی میں نے اور آپ نے خوب قدردانی کرنی ہے. نعمت ہے, یہ نعمت ہے. اس کے ایک ایک بالش کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کی ایک ایک بالش کی حفاظت فرما, اور جو اس کی طرف میلی نظر کرے, چاہے اندرون سے کرے چاہے بیرون سے کرے, اللہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے. ہاں اللہ ایسے لوگوں کو ہم سے اور ہم کو ان لوگوں سے دور کر دے, پاکستان کو بچا لے اللہ. ہاں اگر بھائی بھائی کی لڑائی ہے, یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باہر سے آ کر تیسرا فائدہ اٹھائے, اور ہوتا بھی یہی ہے, ہوتا بھی یہی ہے. تو ہمیں تو بھائی بندی کی طرح ایسے مکے کی بانند, ایک انگلی میں وہ طاقت نہیں ہے, جب 5 انگلیاں ملتی ہیں نا تو مکہ بن جاتا ہے, پھر جب مکہ کسی کو لگتا ہے نا تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. تو ہم سب ایک بن کر رہے ہیں اور اپنی نعمتوں کی قدردانی کریں. اللہ تعالیٰ نعمتوں کے شکر کرنے والوں کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. آج آپ دیکھیں عراق میں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, ان سے پوچھیں آزادی کی نعمت, ان سے پوچھیں. شام کے اندر ظلم کی ایک کہانی ہے, ان سے پوچھیں कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है, और हमारे फलस्तीनी भाइयों से तो क्या ही पूछना है। अगर मेरा रुआ रुआ जुबान बन जाए ना, और एक एक जर्रा कायनात का जुबान बन जाए, तो हम इन इन मुजाहिदीन का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते कि कैसी उन्होंने कुर्बानी देकर मुसलमानों को क्या सबक दे रहे हैं, क्या सबक दे रहे हैं। उनसे पूछो मेरे प्यारे भाई कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। लोग कहते हैं जनाब एटम बम बना के क्या उसको कपड़ा मार के रखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई, अगर आज ये एटम बम रखा हुआ भी ना होता तो आप क्या समझते हैं कि ये पड़ोस में रहने वाला आपको छोड़ देता, हमको छोड़ देता? आज मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से पूछो कि आजादी की नेमत क्या नेमत होती है, क्या नेमत होती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जब कोई फौज किसी मुल्क पर कब्जा करती है ना, तो वहां पर तहस नहस कर देती है, किसी की माँ बहन बहू बेटी की इज्जत बाकी नहीं रहती। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान अदा किया है, जहां पर हम इज्जत से रहते हैं। हाँ, इज्जत से रहते हैं, इज्जत से कमाते हैं। महंगाई दुनिया में है, महंगाई दुनिया में है, लेकिन मुझे एक दिन भी बता दो कि अल्लाह ने मुझे और आपको भूखा सुलाया। आपको भी वक्त याद होगा, अपने बचपन के अंदर मुर्गी के एक दिन होता था जी, मुर्गी उस दिन पकती थी, ओ आज हमारे घर में जनाब ईद हो गई, ईद हो गई, ईद हो। अब तो मुर्गी बेचारे की वैल्यू खत्म हो गई। हाँ, इतनी पकती है माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे माफ फरमा दे, मुर्गी बेचारे की वैल्यू खत्म हो गई। सही, बिरयानी बेचारे की वैल्यू खत्म हो गई। ठीक, अल्लाह कैसी कैसी ने, आज हमारे बच्चे जो है ना वो गोश्तखोर जानवर बने हुए हैं। सब्जी तो ऐसे कहते भाई हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से। सही, पहले सब्जी दाल कितनी बना करती थी मेरे भाई। हमारे उस्ताद कहते थे हम लोग दाल इतनी खाते हैं कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप होगा तो डी होगा दाल। सही है, ब्लड ग्रुप भी क्या होगा भाई, कभी अरहर की दाल, कभी मसूर की दाल, कभी मलका मसूर की दाल। नेमतें अल्लाह ने बढ़ा दी हैं मेरे प्यारे भाई, नेमतें अल्लाह ने बढ़ा दी हैं। तो अल्लाह की जो दी हुई मौजूदा नेमत हो ना, उसका शुक्र अदा करते रहो। इन ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बिजली के बिल देने की जो है ना सलाहियत दी हुई, अगर ना देते तो मैं क्या कर लेता। बेशक 50,000 रुपये आ गया, 40,000 रुपये बिल आ गया, लेकिन अल्लाह दे तो सकता हूँ, दे तो दिया। सही है जी, शुक्र अदा करें। ये अल्लाह किराए के मकान, अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने लोग हैं जिनके पास तो ये मकान भी नहीं है। तो इन चीजों को लेकर अपने पाकिस्तान की बुराइयां करके जो लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं, सही है जी, कोई इज्जतों के अंदर थोड़ी है, जिल्लतों के अंदर है। यहाँ डॉक्टर की इंजीनियर की डिग्री ली हुई है, वहां पे डिग्री मानते नहीं है, जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं सिर्फ डॉलर की लालच में, सिर्फ डॉलर की लालच में। और अब ऐसा हो गया है कि कोई वहां से कमा कर भेज नहीं सकता, कोई यहाँ मकान नहीं कर सकता। अब तो यहां से कहते हैं, हाँ मेरे एक दोस्त है, उनका बेटा अमरीका में, कहने लगे आते हंसते हुए आए, कहने लगे बेटे ने कहा अब्बा पैसे खत्म हो गए, पैसे भेज दे। हाँ, अब्बा को भेजने चाहिए, बेटे से, बेटा साहब अब्बा से मंगा रहे हैं कि अब्बा पैसे भेज दे, पैसे खत्म हो गए। हाँ, तो ये हमारे पाकिस्तान की कदरदानी बड़ी नेमत है। आपस का इख्तिलाफ हो जाता है, तबीयतों का इख्तिलाफ हो जाया करता है, लेकिन इस इख्तिलाफ की वजह से ये कहना पाकिस्तानी ना बनता ना उज़ुबिल्ला, इससे अच्छा तो हम ही जो है ना वहीं रहते। तो पता चल जाता जब हिंदुओं के जूतों के बूट के तलवे चाटते ना, फिर पता चलता कि वो कैसी इज्जत देते। ये हिंदू बनिया बड़ा खतरनाक है, ये हमारा नहीं है, इसने हमारे अंदर जनाबे वाला जो है ना आपस में लड़ाई का वो शुरू करा रखा है। इसलिए अपने पाकिस्तान की कदर कीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा कीजिए। 14 अगस्त आ रही है, लेकिन शुक्र ये नहीं है जैसे आजकल हम मनाने लग गए, सारे लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, कौमी तराना पड़ेंगी, वहां पे खड़े होके जनाब बड़े मियाँ भी देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। ये तो हराम काम है भाई, गाना बजाएंगे तो हराम काम होगा। हाँ, दीन ये सब, ये तो अल्लाह की नाशुक्री है। ये 14 अगस्त बनाई तो जा रही है, लेकिन अंग्रेज यहूद नसारा के तरीके पर। होना तो ये चाहिए था कि सदर वजीर आजम ऐलान करें कि भाई आज हम भी मस्जिद में वक्त गुजारेंगे, दुआएं करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जे जाए के काम क्या होने लगे, यहूद नसारा जैसे। تو ہم شکر گزاری کے اندر بھی آج غلام بن چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح آزادی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی اذان کے بعد سنت ادا کریں.